102-103 गाथा हो गई थी और जिनमें अत्यंत स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया था कि एक देव दूसरे देव का कर्ता किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। और शिष्य के चित्त में ये प्रश्न खड़ा होता है कि भाई नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, आप बार बार कह रहे हो, पर हमने ये होता है ये भी जिनवाणी में ही पड़ा है। समय सार के श्रोताओं का सबसे बड़ा जो प्रश्न था मुझमन, ये क्या है कि हमने पहले जिनवाणी में ही पढ़ा है और आप जैसे गुरुओं ने ही पढ़ाया है कि देव कर्म का कर्ता आत्मा है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, और इस जीव ने ऐसे ऐसे कर्म बांधे, ऐसा किया ऐसा किया, ये सारा वर्णन बहुत विस्तार से हम माँ के पेट से सीख के नहीं आए थे। अब आप ये कहते हो कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो उसका जवाब में सीधा सत्य ये गाथाएं हैं 105 और 106 में, और इनका हेडिंग अत्यंत संक्षेप में है और वो ऐसा है कि अतो अन्या तुम उपचारा, पर इससे विरुद्ध जो भी बात कही जाती है आगम में भी उसे कोरा उपचार समझना चाहिए। कितना संक्षिप्त में है, जैसे अपन कहते हैं कि बेटा तो माँ बाप से पैदा होता है, उन्हीं का है, अब उसे सारे गांव के बुजुर्ग सब बेटा बेटा कहते हैं, क्या तो वो सबका बेटा हो जाएगा? यही तो कहेंगे, अब रोक तो सकते नहीं है कि ये सब उपचरित है, बस उपचार है और कुछ नहीं है, वो उनका पुत्र नहीं है, नहीं है और नहीं है। पहले तो कुछ बुजुर्ग लोग ही 50-60 के ऊपर वाली बेटा बेटा कहते हैं, और आज मैं जब देखता हूँ छोकरे 20-25 के वर्ष हैं, अरे दूसरे बेटा 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 बेटा, पागल हो गए हैं क्या हो गए? अभी तो तुम ही बेटा हो, और क्या अपने से 2 वर्ष छोटे वही बेटा खोगे छोके जा रहे हैं? हमारे मुंह से तो अभी भी नहीं निकलता है, क्या देखो गाथाएं पढ़ती हैं। जीवं निबन जीवं निहे दुहूदे कितना, हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। स्थूल उदाहरण दिया कि युद्ध में सैनिक लड़ते हैं, टीका में लिखा है कि लड़ने के परिणाम से परिणमित सैनिक होते हैं, वो लड़ते हैं माने वो धनुष बाण चलाते हैं, बंदूक गोली चलाते हैं और सामने वाले को मारते हैं, ऐसा नहीं, वो तो कह ही चुके हैं कि वो तो अपने परिणामों के ही करता है, कौन सा युद्ध करने के परिणाम से परिणमित हुए, اور باقی جو سب چلے وہ اپنے آپ چلے, ہاتھ چلا یہ چلا وہ, ابھی یہاں کی چرچا نہیں کرنی. تو کہتے ہیں اس پرنام سے پرنمت تو کون ہوتے ہیں, سینک, اور راجہ تو اس پرنام سے بھی پرنمت نہیں ہوتا ہے. اس سمے جب یدھ چلتا رہتا ہے تب راجہ چائے پیتا ہو, شطرنج کھیل رہا ہو, مطلب اور دوسرے دوسرے پرناموں سے اس کا پرنام بھی یدھ کی پرکرن میں سوچ بھی نہیں رہا ہو. وہ تو آدیش دے دیا, اب سینپتی جائے گا پر وہاں پر ہوگا, وہ سمبھو بھی نہیں ہے نا. اب پردھان منتری اور راشٹرپتی کیا کر سکتے ہیں, اس کاشمیر پہ سیما پہ لگا دی, انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی کوئی ادھر گڑبڑ کرے تو تم کو ادھیکار ہے اسے روکنے کا, گولی چلانے کا, جو بھی سب. اور ایک ایک ادھیکاری کے اوپر اوپر بٹے ہوئے, کتنے نیچے کی بات ہے. تو وہ کہتے اس پرنام سے پرنمت نہیں ہو رہا, پھر بھی راجا نے یدھ کیا ایسا کہا جاتا ہے. تو ایسے ہی جیو نے کرم کیے ایک کہنا ایسا ہی اپچار ہے. کند کند ہر بات کو ادھارن سے سمجھاتے ہیں. ہمارے پتا جی کی بھی یہ عادت تھی, انہیں کوئی بھی بات کسی کو بچوں کو کہنا ہو, بہوؤں کو کہنا ہو, تو وہ سیدھی نہیں کہتے تھے, ایک کہانی سناتے تھے, سمجھے نا, اور اس کہانی کے مادھیم سے ہی کہتے تھے. اور کبھی کبھی تو اتنا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا تھا کہ بہت اریٹیشن ہو جاتا تھا کہ سیدھا کہہ دیتے نا. کیا کند کندگی ان کی شیلی ایک ہی تھی, یہ نئے کا نام نہیں بتاتے, جیسے نہ چاہے نئے کا نام بتائیں گے, اپچار سے کہہ دیا ان نے. لیکن وہ اپچرت نیت بھوی تو دو ہیں نا, سدبوت اپچرت اور سدبوت اپچرت, ایسا کچھ نہیں کہتے ہیں. ایسا وہ کیا کہنا ہے, ٹھیکہ کار کیا کرتے ہیں جی, بھائی کہہ دیتے سب. تو نئے لگا کر کے کہنے کے بعد بھی بات جتنی اسپشٹ انہیں کرنا ہے وہ اتنی اسپشٹ نہیں ہوتی ہے, اس لیے ادھارن سے کہا جاتا ہے. جیسے استری پتر مکان جائیداد روپیہ پیسہ نگر دیش گاؤں اور دنیا, ان سب کو اپنا کہنا, ان کا کرتا اپنے کو کہنا, ایک اپچرت اسدبھوت ویوہار نئے کا کام ہے. ٹھیک ہے, اب ان دونوں میں کتنا فرق ہے, کتنا. یہ تو سارا ہندوستان میرا ہے, اور یہ مکان جس کی رجسٹری میرے نام ہے, جس کے پیسہ میں نے دیے ہیں, میری آگیا کے بنا کوئی پرویش نہیں کر سکتا ہے, وہ گھر اور سارا ہندوستان, یہ دونوں کے لیے ہمارے پاس ایک ہی نئے ہیں. میرا اپنی بھاشا بھی اتنی کمزور ہے, ہندوستان ہمارا ہے اور یہ گھر ہمارا ہے, اور پتنی ہماری ہے اور بچے ہمارے ہیں اور شریر ہمارا ہے, ہمارے پاس ایک ہمارا شبد ہے. تو ان میں کتنی دوری ہے, کتنا فرق ہے. اپنے گھر کو بیچ کر ہم اپنا قرضہ چکا سکتے ہیں, بھوش کے اور کام کر سکتے ہیں, آجیوکا کر سکتے ہیں, دھندا پانی کر سکتے ہیں, پر ہندوستان کو بیچ کے تھوڑی کر سکتے ہیں. دونوں میں فرق کتنا ہے نا, لیکن ہمارے پاس ایک ہی نئے کے کھاتے میں ہم نے ڈال دیے. اب ان نئےوں میں بھی کس کا وزن کتنا کم زیادہ ہے یہ بتانے کے لیے آچاریہ کیا کریں, اور نیا نام رکھیں, ایک نیا نئے بنائیں, تو تم اتنے ہی نئے پڑھنے میں تو پسینہ چھوٹ جاتا ہے, پھر تو کیا ہوتا اتنا موٹے بریکرن میں, کہ ایک کھاتے میں کیوں شریر سے لے کے ساری دنیا کو اسدبھوت میں لے لیا, اور شریر کو چھوڑ کر باقی سارے سنجوگوں کو اپچرت اسدبھوت میں لے لیا, تب بھی تو اتنے نئے بن گئے. اور یعنی ایک اور ایک دیش کو الگ نئے بناتے, پھر پرانت کا الگ نئے بناتے, پھر ضلع کا الگ بناتے, پھر جے پور نگر کا الگ بناتے, کیوں. تو اس کے انتر جو تارتم بتانا ہے, سمجھ میں نا, اس کے انتر کے جو تارتم بتانا ہے वो बताने के लिए भी उदाहरण का प्रयोग कर दिया। ख्याल में है ना कि भैया ये उपचार तो है, लेकिन उपचार तो उन नौकरों में भी होता है जब हम सीधी आज्ञा देते हैं, जाओ एक कप चाय लाओ, एक गिलास पानी लाओ, और वो दौड़ के जाता है। ख्याल में है ना, उसमें वो एक सैनिक बॉर्डर पे लड़ रहा है और राजा वहां बैठा और भाव से पड़े, उसमें कितना अंतर है। अब हमारे यहां तो एक कृत और कारित और अनुमोदना, तो दोनों ही कारित में आएंगे ना। हमने नौकर से एक गिलास पानी बुलाया और चाहे राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि लड़ो, क्यों ये एक ही शब्द है ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये बात इतनी दूर की कौड़ी है। और आप समझे ना, जो उपचार तसदूत व्यवहार नय का कथन है उसमें भी बहुत कम वजन वाला कथन है ये बताने के लिए उन्होंने यहां पर ये शब्द का प्रयोग किया, राजा का उदाहरण दिया। देखो अभी मैं पढ़ता हूं, जो मुझे बात कहनी है मैं पढ़ के बाद बताऊंगा आपको, पहले बता देना फिर मजा नहीं आएगा। जिस प्रकार योद्धाओं के द्वारा युद्ध किए जाने पर राजा ने युद्ध किया इस प्रकार लोग कहते हैं, उसी प्रकार ज्ञानावरण आदि कर्म जीव ने किया ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। अब आत्मख्याति पढ़ते हैं, यद्यपि इस लोक में यह आत्मा स्वभाव से पौद्गलिक कर्मों का निमित्त भी नहीं है। अब समझे ना, वहां तो कहा निमित्त बताया, यहां निमित्त भी नहीं है, क्योंकि इन्हें याद है कि स्वामी गाथा की टीका में ये खुद ही अमृतेंद्र कह के आए थे कि आत्मा नहीं है, उसके योग और उपयोग है। आगे समझे ना, वो बात उन्हें याद है और गाथा में ऐसा लगता है कि निमित्त है वो, तो प्राज्ञा दी ना उसने, है ना। यद्यपि इस लोक में यह आत्मा स्वभाव का, उन्होंने गोष्ठ में कहा ना परमार्थ, मान स्वभाव माने स्वभाव की अपेक्षा, परमार्थ से माने वास्तविक अर्थ है, अथवा परम नय से, अथवा अपने जो नय लगाओ इसमें वो नय से लगा लेना है ना। पौद्गलिक कर्मों का निमित्त भी नहीं है, तथापि जो अज्ञान भाव पौद्गलिक कर्मों का निमित्त भूत है, लेकिन उसी में जो अज्ञान भाव है उस जीव में, अब अज्ञानी आत्मा आ गया, पहले तो अकेला आत्मा पकड़ा था, अब अज्ञानी आत्मा, जो अज्ञान भाव निमित्त है काय में वो कर्म बंधन में, तो अनादि अज्ञान के कारण उस अज्ञान भाव रूप परिणमित होने से वो आत्मा उस अज्ञान भाव रूप से परिणमित हुआ। पौद्गलिक कर्म जीव ने किए, आत्मा ने किए, ऐसा विकल्प हो जाए, सुनो, यानी वो परिणमित तो हुआ उस रूप, और वो भी कर्म के कारण बनना के कर्म रूप परिणमित करने में निमित्त भी नहीं है, फिर भी ऐसा क्या पौद्गलिक कर्म आत्मा ने किए। अब देखो ये अज्ञानी की कितनी परिभाषा डालते हैं, ये ऊपर तो कुंद कुंद सीधी कहते हैं, बस ऐसा कह दिया है, लेकिन ये कहते हैं ऐसा विकल्प किन्हें उत्पन्न होता है, निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से जो भ्रष्ट हैं और विकल्प करने में बहुत चतुर हैं, विकल्प परायण अज्ञानियों को होता है, ये उसके दो विशेषण उन्होंने और लगा दिए। क्या समझिए ना, विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट हैं और विकल्प करने में बहुत चतुर हैं। ऐसा करना बहुत से काम तो ऐसे होते हैं कि एक कल्पना से सोच जाता है ऐसा हो जाएगा और उसके हमको उसके विरुद्ध क्या करना है, सारी प्लानिंग करता है, सारा व्यवस्था करता है, लोगों को कहता है, ये करता है, तो विकल्पों में परायण हो गया ना। क्या देखो भैया, अभी आजकल आतंकवादी बहुत हो गए हैं कि अपने आकर अपनी मूर्तियों को खंडित ना कर दें, अभी ऐसा करो ये करो, पढ़ाई मढ़ाई बंद करके सभी ड्यूटी लगा दो, वहां जाओ लाठियां लेके रख लो, फिर अभी विकल्प परायण लोग हैं, आज तक ना हुआ है ना भविष्य में कभी होएगा, और होएगा तो उनकी लाठियां कुछ काम आने वाली नहीं है। क्या है? बोले ये है कि नहीं है, ये क्या है, ये सब विकल्प परायण लोग हैं। ऐसा अपने यहां एक दफे हुआ था, आपको मालूम है अजित भाई, इधर बहुत ही ज्यादा वातावरण खराब था, तो सब ऐसा ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, लड़कों में जरा भाषण दिया, समझाया सावधान रहना है, जोश आ गया, हम ऐसा करेंगे जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करने देंगे, ऐसा नहीं करने देंगे, और एकदम पढ़ाई छोड़ छाड़ करके सब चौकीदार बन गए। भाई क्या हो रहा है, कैसा वैसा सा है, लड़कों में कितना उत्साह आया है और कितना कितना बढ़िया उनको भाव आया, और तुम व्यवस्थापक बहुत बढ़िया और लड़की बहुत बढ़िया, जाओ चुपचाप अपने कमरे में बैठ के पढ़ो, कुछ नहीं करना है, ये मूर्तियों को कोई तोड़ने आने वाला नहीं है, आएगा तो तुम्हें से कुछ होने वाला नहीं है, और यदि तुम कहते हम जान की बाजी लगा देंगे, हाँ ये तो कर सकते हो, बनियों से मारने का काम तो नहीं हो सकता, लेकिन मरने का तो हो सकता है, क्यों, लेकिन हमें इस कीमत पर घबराना नहीं, बहुत कठोर बात कह रहा हूं, इस कीमत पर इन मूर्तियों को नहीं बचाना है। क्या ये शर्म नहीं आती तुम्हें, ये कैसा पंडित है, क्या सोचता है, क्यों, हम तो पहाड़ों को भी इस कीमत पर बचाने को तैयार हैं, हम तो नदियों को भी इस कीमत पर बचाने को तैयार हैं, क्यों, कि मैंने कहा हमको नहीं बताना है, क्यों, कि बेटा ये मूर्ति खंडित हो जाएगी, इससे बढ़िया मूर्ति मूर्ति मोहल्ले में हम बनवाकर और द्वारा पंच कल्याण की प्रतिष्ठा कराएंगे, तो और भावना के साथ में इसको विराजमान कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बेटा तुम मर गए तो तुम्हारे बाप को क्या जवाब देंगे, जैसे 5 साल पढ़ा करके हमने तैयार किया है, एक विद्वान बनाया है, क्यों, और एक वो मर गया तो फिर दूसरा एक मिलेगा नहीं कच्चा माल हमें, और उसके साथ हम इतनी मेहनत करने के लिए 5 साल जिंदा रहे कि नहीं रहे, वो बना क्या नहीं बना उसका क्या पता, और ये तो 6 महीने में बन जाती है, और इसे तो कोई भी बना लेगा, हमारा सबसे कमजोर विद्यार्थी जिसे कुछ नहीं आता है वो भी बना के बड़ा मूर्तियां बनवा करके प्रतिष्ठा करा करके 50 लाख हजारों मूर्तियां विराजमान कर देगा, क्या है उसमें, उसमें कोई अकल बखल की ज्यादा जरूरत होती नहीं है, क्यों, सचमुच लोगों को बस चले तो मुझे गोली मार दे, कैसा पंडित है, लेकिन ये जो मैंने आपको कह रहा हूं ये मेरा बिल्कुल पक्का और सच्चा विचार है, यदि इसकी सजा यही है तो कर दो, लेकिन ये चेतन मूर्ति है, ये भगवान आत्मा है, जिन्होंने ये मुश्किल से आते कोई आसान है क्या, ये करोड़पतियों के बच्चे तो आते ही नहीं बेचारे, ये तो सब धंधे पानी में अपनी जिंदगी बर्बाद करने का ही लिखा के लाए हैं, उसका ही लिखा के लाए हैं, इसकी कीमत ही नहीं है उन्हें, तो मैं सब गुजरातियों से कहता हूं, कि तुम्हारे तो कोई आए नहीं, साल देकर गुजराती नहीं आए ना, एक भी गुजराती नहीं आया, मेरे कहने का अर्थ यह है कि इसमें कच्चा माल बहुत कठिन है प्राप्त होना, कच्चा माल का मतलब विद्यार्थी जो 5 साल तक पूरे तन मन से इसमें पढ़ने को तैयार हो, तो उसका कच्चा माल तो यहां बहुत मिलता है, मकराने में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो हम स्विट्जरलैंड से मंगा लेंगे, कहां कहां से आता है मुझे पता नहीं, इटली से आता है इटालियन पत्थर, क्यों, कहीं से भी आएंगे, इटली के लोग यहां विद्वान बनने नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री बनने आ सकते हैं, क्यों, वे तो बड़ी पोस्ट पे ही आएंगे ना, भगवान बनने ही आएंगे ना, तो पत्थर तो भगवान बन के ही बैठेगा ना यहां का, तो किसकी तुमने कीमत ज्यादा की, किसकी कीमत ज्यादा है वास्तव में, एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाता हूं, बहुत मार्मिक है, इतिहास में सुरक्षित भी हो जाएगी। भट्टे कुपड़ में पंच कल्याणक था और हम लोग बाबू भाई के मकान में ठहरे थे, नया नया उन्होंने मकान बनाया था, तो हमारे बगल के ही कमरे में साहू जी ठहरे थे, साहु शांति प्रसाद जी। तो बगल अगल में ठहरते हैं तो फिर बातचीत का ज्यादा मौका मिलता है ना, तो तब अपनी बार वो पाठमाला विद्या विज्ञान पाठमालाएं निकली थी और वो उन्हें वहां पढ़ी तो उन्हें इतनी पसंद आई कि तो उन्हें 25,000 छपाकर सब जगह बांटी और उसमें अपनी तरफ से एक पेज जुड़वाया और जिसमें ये लिखा कि मैं सारी समाज से अपील करता हूं कि बहुत अच्छी किताबें हैं, इनको अपने बच्चों को पढ़वाएं, पाठशाला में पढ़वाएं, स्कूलों में कोशिश करें। वो अभी भी अपने उसमें लगा होगा, सबसे पहली जो तीर्थंकर महावीर की किताब है ना, पहला एडिशन, उसमें वो प्रकाश की में छपा है, कभी देखना हो तो देख लेना। फिर उनने एक बार कहा, पंडित जी साहब हम आपसे एक निवेदन करते हैं। साहब फरमाओ। जो महासमिति अभी 2500वां निर्माण में हो सब चल रहा था ना, निर्माण समिति है, इसके लिए आप बहुत पैसे की भी बहुत जरूरत है। यदि आप जैसे विद्वान कुछ थोड़ा सा सहयोग करें तो हमारी ये समस्या हल हो सकती है। इसलिए मेरा निवेदन आपसे है, मैंने क्या जवाब दिया था वो आपको सुनाना है और उनने फिर क्या जवाब दिया था वो भी सुनाना है और वो इतिहास में सुरक्षित रहे मैं ये भी चाहता हूं, इसलिए भी सुनाना है। मैंने कहा, साहू जी आप जैसा आदमी यदि 1 करोड़ रुपए चाहिए आपको इसके लिए, एक सेकंड में विकल्प आए आपको और पेन निकाल के एक चेक पे साइन करके दे दो तो 1 सेकंड में 1 करोड़ दे सकते हो और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी रोटी दाल में फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कल कारखाना बंद नहीं हो जाएगा। कहा बात तो ठीक है, और हम जैसे 10-20 लोग लग जाएं, वो आज से 1974 में 1 करोड़ रुपया बहुत होते थे, आज तो 50 करोड़ इकट्ठा करना आसान है, लेकिन उस वक्त 1 करोड़ बहुत मुश्किल थे। हम 10 पंडित सारी जिंदगी लग जाएं तो 1 करोड़ रुपये इकट्ठा नहीं कर पाएंगे और आपको 1 सेकंड के विकल्प की जरूरत है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। उस काम में आप विद्वानों को लगाना चाहते हैं, जो काम हम कर रहे हैं तुम जैसे 100 सेठिया मिलके नहीं कर सकते, ये कहा बहुत स्पष्ट शब्दों में, ये शास्त्र लिखोगे तुम, ये पढ़ोगे, ये पढ़ा सकते हो, हमारे काम करने वाले रेयर हैं और तुम्हारे जैसे काम करने वाले गली गली में बैठे हैं और बहुत तेजी से कुकुरमुत्ते जैसे उग रहे हैं, हर साल 10-5 हजार करोड़पति पैदा हो जाते हैं हिंदुस्तान में, समझ नहीं कि नहीं आई, हो जाते कि नहीं हो जाते। जो काम आप लोग चुटकियों में कर सकते हो, एक मीटिंग में बैठो 10 करोड़पति और फटाफट 25 लाख लिखाओ, खत्म। तुम 10 पंडितों की जिंदगी बर्बाद करना चाह रहे हो, उनका कच्चा मटेरियल मिलना कितना मुश्किल है और 1 करोड़पति बनने की इच्छा वाला कच्चा मटेरियल गली गली में भरा पड़ा है। क्यों तुम बुलाओ तो हम तुम्हें 1 करोड़पति बनाने की विद्या सिखाएंगे, क्यों उन 2-2 लाख 5-5 लाख रुपया घूस देकर भर्ती करने को तैयार है, क्यों? ये जो आजकल हुआ है ना कि गवर्नमेंट ने एड देना बंद कर दिया है, ये सबसे ज्यादा नुकसान तो अपने धार्मिक विद्यालयों को हुआ है, क्योंकि वे विद्यालय जिनमें वो विद्या पढ़ाई जाती थी इंजीनियरिंग डॉक्टरी की, वो तो अपने दम पर चलने लग गए, एक एक विद्यार्थी उनके माँ बाप 10-10 लाख रुपए देने को तैयार हैं, उन्हें अब गवर्नमेंट की एड की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये विद्या के लिए हमको 25,000-30,000 रुपए साल खर्च करना पड़ता है हमें, तब विद्यार्थी मिलते हैं, समझ में आया ना, अंतर समझ में आया कि नहीं आया? यदि यहां से निकले हुए विद्यार्थी को 1 लाख रुपए महीने की गारंटी हो तो हमें आप लोगों से 30,000 नहीं मांगने पड़ेंगे, ये विद्यार्थी आएंगे और 5 लाख हमको पहले देंगे कि भर्ती कर लो इसे, क्या समझ में आया? क्यों तो इनको जो याद मिलती थी, मरे तो ये है, बंद तो ये होंगे, क्यों बेकार को बंद होने वाले हैं, और उनने किए इसके लिए है, क्या जरूरत ही नहीं है, शिक्षा की इतनी कीमत हो गई। कल मैं महावीर स्कूल में गया था परसों, वहां भी मैंने कहा था कि एक दिन ऐसा था कि माँ बाप 5 रुपया फीस के नहीं दे सकते थे, और न उनके पास पैसा था, और था तो पढ़ाई के प्रति इतनी महिमा नहीं थी, और आज लोगों के पास पैसा हो गया और पढ़ाई की इतनी महिमा हो गई कि मकान बेच के भी बेटे को पढ़ाना चाहते हैं, वो विद्या जिसमें 1-2 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिलेगी। क्यों? और अमेरिका के राष्ट्रपति को ये बोलना पड़ा कि तुम लोग पढ़ना पढ़ो, अमेरिकन लोग नहीं सारे इंजीनियर के आगे तुम्हारे ऑफिसर बन जाएंगे और तुम्हें झाड़ू लगाने का काम मिलेगा। क्यों? अब वो विद्या और दूसरी ये विद्या, अध्यात्म विद्या। अब इस विद्या को विद्यार्थी मिलना कितना कठिन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी मिलना। क्यों? और अब तुमने हमने माना ये तैयार किया 5 बरस में, तो 5 बरस में 1.5 लाख में विद्वान बन गया, वो 1.5 लाख का है। अरे भैया, अब तुम 1.5 लाख 5 साल बाद वो खत्म हो जाए, फिर 1.5 लाख देके ले आओ कहीं से, फिर 5 साल लगेंगे, वो कच्चा लड़का कहीं मिलेगा तो। क्यों? बहुत समझ में आया कितना फर्क है? मैंने कहा, बिल्कुल आंख बदल के कहा साहू जी से, आपका क्या थिंकिंग है, आप क्या सोचते हैं? मेरी तो प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा करके मैं आया हूं जयपुर कि मैं किसी से एक शब्द भी नहीं बोलूंगा ऐसे। यदि तुमको पैसा इकट्ठे करने वाला पंडित चाहिए तो दूसरे को बुला लो। मैं प्रतिज्ञा करके आया हूं, मेरे संसार के सब लोगों ने माना है कि आपको ये काम नहीं करने का, और आप मुझे बोल रहे हैं, बता रहे हैं। सच बोलता हूं, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगी नाराज ने। उनने कहा कि नहीं नहीं पंडित जी, आप तो वो ही काम कीजिए, ये काम हम ही करेंगे, हम करेंगे। अब मैंने कहा तो कहा, अब मैं किसी से नहीं कहूंगा, ये बोलता हूं, मैं बोल रहा हूं, टीवी पे जा रहा है, टीवी पे आएगा, सारे देशों 10,000 लोग देखेंगे, कोई करेक्ट है, सच्ची बात है, समझे ना? बिल्कुल। मैंने कई लोगों को बताई, गुरुदेव को भी बताई ये बात, सब लोगों को बताई, ऐसा ऐसा मेरे से बोलते थे, और मैंने ये जवाब दिया। उन्होंने कहा बहुत ठीक जवाब दिया, बहुत बढ़िया की सच्ची बात है। तो सवाल, ये जवाब सिर्फ उनको ही नहीं था, ये सारी समाज के लिए जवाब है, जितने लोग जाने उन सबके लिए ये जवाब है। विद्वानों का काम, विद्वानों के का उपयोग ऐसे काम के लिए होना, इससे बड़ा दुरुपयोग और कुछ नहीं हो सकता। क्या? किसी को डॉक्टरी में पढ़ा है, और बार डॉक्टरी हार्ट का स्पेशलिस्ट हो गया है, बढ़िया से बढ़िया ऑपरेशन करता है, और उसे वो बंद करवा के क्यों, और उसे तंदा चिट्ठा लेने भेज दो, क्यों? तो आप क्या कहोगे, पढ़ाई डॉक्टरी क्या को पढ़ाई, यही कराना था तो ये तो 4th क्लास पास भी कर लेता। ये काम करने के लिए तो पढ़ाई भूलना पड़ती है, क्यों? तो वो डॉक्टर नहीं कर सकता, क्योंकि उसका समय बहुत कीमती है। काय के लिए कीमती है? क्या सवाल उसको पैसा कमाएगा? नहीं, लेकिन जो हार्ट के बड़े बड़े नेता हैं ना, देना मर जाए, बड़े बड़े ऑफिसर, उनके लिए चाहिए ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर, उनका इलाज कराने के लिए पैसा तो गवर्नमेंट देगी। इसलिए वो कहते नहीं, ऐसे आदमी को हम दूसरे काम में नहीं लगा सकते। अपने आत्मा का हित छोड़कर, और जो जो परम जैसा लिखा है टोडरमल जी ने, ये ऐसा उपकार है कि तीर्थंकर और गणधर देव भी ये काम करते थे। देखो, ये काम विद्वान इसलिए बनाए हैं कि वो काम करो यदि तुम्हें करना है आत्मा का कल्याण से थोड़ा सा समय मिले तो वो जो उन्होंने किया ना गणधर देव ने और तीर्थंकर देव ने, वो काम करना, और हम वो काम करके छोड़कर, और कौन सा काम, भीख मांगने का है? क्यों? ये कौन सी महानता है, ये कौन सा बड़कपन है, सोचो। तो उन्होंने उदाहरण दे के बात समझाई। क्यों समझाई? अब समझ में आया ना? मैं बता देते तो क्या होता? तो मैं बताने में इतनी गहराई से बात आपके हृदय तक पहुंचती और मैं इतना नहीं खोलता इस गाथा का अर्थ, तो भी आपके हृदय में ये बात पहुंचती कि क्यों किया हमने। कि ये तो ऐसा है कि जो वो शतरंज खेलता हुआ बादशाह को कहना कि इसने युद्ध किया। आत्मा तो अपने में मगन है, अपने में मस्त है, उसने कर्म बने में किया ही नहीं है। वो राग भी नहीं, वो राग भी का करता तो वो अज्ञानी बनता है। समझना है ना? देखो कितना उदाहरण दिया। निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट और विकल्प परायण अज्ञानियों को होता है। क्या कि मैंने कर्म किए और मैंने स्मारक बनाया, मैंने बिल्डिंग बनाई, मैंने ये किया, इनके लिए कौन सी उपाधि दी है ये अमरचंद ने? देखो ऐसा विकल्प क्या कि पुद्गल कर्म मैंने किए। अब इससे और हल्के विकल्प तो सब इसी श्रेणी में आएंगे ना। उन विकल्पों के कर्ता कौन है? उन विकल्पों के कर्ता, उस पर के कर्ता तो वे भी नहीं है। निर्विकल्प विज्ञान घन से भ्रष्ट और विकल्पों में परायण अज्ञानियों को होता है। देखो कितनी क्या बात खोली है मैत्र ने। उन्होंने इतना कह दिया कि बस जैसे राजा लड़ता है एक नाम होता है, तो जब सेना लड़ती है वैसा ये है कि इनकी पुद्गल ने कर्म नहीं किया। लेकिन उनका अर्थ खोलने में जो एक जगह और ऐसा है कि उन्होंने कहा कुंद कुंद ने कि शुभोपयोग जुत्तो सज्ञ सोहम, शुद्धोपयोग जुत्तो निर्वाण सोहम, शुभोपयोग जुत्तो सज्ञ सोहम पाभजी। शुद्धोपयोग से युक्त जीव मुक्ति का सुख प्राप्त करते हैं और शुभोपयोग से युक्त जीव स्वर्ग का सुख प्राप्त करते हैं, ऐसा लिखा। अब नीचे टीका में क्या लिखा उन्होंने? अब ऊपर तो स्वर्ग का सुख क्लियर लिखा कि नहीं लिखा? तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग का सुख कैसा? तप्त घृतोपसिक्त पुरुष एवं, क्या खोलते हुए तेल से नहाए हुए पुरुष की भांति। खूब खोलता हुआ तेल किसी आदमी के ऊपर डाल दो और जैसा उसे सुख आता है ना, मजा आता है, ऐसा मजा स्वर्ग में मिलता है। उसे मजा आएगा, उसे तो दुख होगा। अब सुख लिखा आप क्या करें? उनने उस मूल में तो सुख लिखा है। मैंने उस उदाहरण को जरा और इलाज किया कि जैसे पुड़ी अब खोलते हुए घी में डालते हैं ना, तो एकदम फूल के कुप्पा हो जाती है और एकदम नाचती है। देखी कभी मां पुड़ी बनती है ना, नाचती देखे ना? तो फूल के कुप्पा हो जाना और नाचना ये तो अपने सुखी का सुख के लक्षण है ना। सुखी लोग करते हैं ना ऐसा। तो जैसे वो पुड़ी फूल के कुप्पा हो गई और नाच रही है ना, ऐसे ही ये लौकिक सुख में नाचने वाले लोग, फूल के कुप्पा होने वाले लोग ऐसा सुख प्राप्त करते हैं जैसा उस पुड़ी को हो रहा है। अमृतचंद में रतन सार में ये सातवीं आदमी गाथा में उधर लिखा है, देख लेना, उसके अजीब करीब होगा। अज्ञानियों को होता है और वह विकल्प मात्र उपचार है, परमार्थ नहीं है। मात्र उपचार है, बस सच्ची बात नहीं है। वो कहते हैं वो कर्म आत्मा ने किए जो ऐसा विकल्प उन्हें हुआ है वो अज्ञानी अज्ञानी में जिस समय वो अज्ञानियों की पहचान है। अब अकेले कर्म की ज्ञाना बर्णादि कर्म, अब वो तो कारमान बगना है, कर्म रूप पण में धोती है, तो किसने देखी गोवर सार पड़ा हो तो वहां से पड़े, इसे तो कौन मानते हैं? अब वो तो अत्यंत नजदीक है ना, तो उसमें तो वास्तव में वो कारमान शरीर है, इसलिए अनुपचयत असदूत व्यवहार में लगेगा वास्तव में, तो है ना। लेकिन ये जो बाहर के सारे काम हैं, तो अब यहाँ एक तरीके से उनने उपचार है कहके हमने कह दिया कि उपचार दशरथ भूमि व्यवहार में है। तो उपचार ये ऐसा नहीं है, वो नए तो वो ही लगाना जो लगता है वहां, आप समझे ना, ये उपचार है, ये बस औपचार है। जैसे मैंने कहा ना कि सारा गांव बेटा कहने लग गया है, तो सारे गांव को चाचा कहने लग गया है, अब आपका एक भी भाई नहीं है, अकेला ही है, लेकिन सारा गांव चाचा, मुसलमान भी चाचा। और आजकल तो बहुत विकल्प परायण नहीं, व्यवहार परायण कहते हैं, ये तुम्हारे चाचा है क्या, हाँ ये दाढ़ी वाले मुल्ला जी क्या, हाँ सारा गांव इन्हें चाचा ही कहता है, हम तो जिनके जन्म से पैदा से चाचा कहते आए, पता क्या नहीं होता। लेकिन वो बिल्कुल ऐसा ही उपचार है, वो कहते हैं इतनी दूर की बात है। यदि कोई कहे कि यह किस प्रकार है तो उससे कहते हैं उदाहरण कि जिस प्रकार युद्ध परिणाम में स्वयं परिणमित होते हुए योद्धाओं को, देखो राजा नहीं योद्धा युद्ध परिणाम से परिणमित हो रहे, युद्ध वे कर रहे ये बात भी नहीं है, उन्हें बंदूक चलाई ये बात भी नहीं है, युद्ध परिणाम से परिणमित योद्धाओं के द्वारा युद्ध किए जाने पर युद्ध परिणाम में स्वयं परिणमित नहीं होने वाले राजा, मैंने वो राजा भी ऐसा नहीं पकड़ना कि जिस वक्त ये सोच रहा हो कि जाओ तुम लड़ो और सोच रहा हो फिर देख रहा हो भाग कर, ऐसा राजा नहीं लेना। यानी उसके युद्ध की बात मन में भी नहीं है, उसके विकल्प में भी नहीं आ रही, एक दफे ऑर्डर दे दिया क्या, और बहुत से ऑर्डर तो नीचे से ही दे दिए जाते हैं ना, हर एक को पावर रहता है। जैसे कि एक कैप्टन के अंदर में 25 सैनिक हैं, तो उसे गोली चलाना है कि नहीं चलाना, ये प्रधानमंत्री देगा, वो कैप्टन ही ऑर्डर देगा, क्यों उन कैप्टनों 25 कैप्टनों के ऊपर एक मेजर है, तो बहुत से निर्णय मेजर ले लेगा, उसके भी ऊपर एक कर्नल है तो वो कर्नल ले लेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे बढ़ते बढ़ते ये सब बातें वहां थोड़ी हैं, वो तो एक बस सर्व है कि भाई ये ऐसा आ गया है तो क्या करना, कि नहीं 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 निपटे तो ऐसे निपटा देना, जैसे निपटे वैसे निपटा देना, बस खत्म। इतना उसने कह दिया और फिर वो अपने काम में लग गया। फिर ज्यादा उसने पूछा, साहब एक बात और पूछू, माथा मत खाओ, कह दिया ना निपटा दो जैसे हो, उसको उस विकल्प के आगे कोई प्रश्न नहीं खड़ा, उस दिमाग में चित्त खड़ा नहीं हो सकता है क्या, क्योंकि उसके पास उस विकल्प को लंबाने के लिए भी फुर्सत नहीं है। युद्ध परिणाम से स्वयं परिणमित नहीं होने वाले राजा में राजा भी कैसा पकड़ना, उन्हें तो अकेला राजा कह दिया लेकिन उस राजा को इनने परिभाषित किया कि राजा ने युद्ध किया, ऐसा उपचार किया जाता है मात्र, वह मात्र उपचार है परमार्थ नहीं। उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म परिणाम रूप स्वयं परिणमते हुए पुद्गल द्रव्य के द्वारा ज्ञानावरणादि कर्म किए जाने पर, तो कौन करता है कि वो कारमान वर्णा ही उसको काम को करती है। ज्ञानावरणादि कर्म परिणाम रूप स्वयं परिणमित नहीं होने वाले आत्मा में, जो ज्ञाना परिणाम स्वयं परिणमित नहीं होता आत्मा, आत्मा ने ज्ञानावरणादि कर्म किए ऐसा उपचार किया जाता है, वह मात्र उपचार है परमार्थ नहीं है। उक्त गाथाओं में का भाव अत्यंत सरल एवं सहज है। आचार्य देव एकदम स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं यह तो मात्र उपचेत कथन है जीव ने ज्ञानावरणादि कर्म किए। वस्तुतः विचार करें तो एक देव दूसरे देव का कर्ता न होने से आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्ता तो हो ही नहीं सकता। देखो यहाँ यह कहा जा रहा है कि आत्मा को कर्मों का कहता कर्ता कहना उसी प्रकार का अत्यंत स्थूल उपचरित कथन है। जिस प्रकार सैनिकों के द्वारा किए गए युद्ध को राजा द्वारा किया गया कहना, राजा तो युद्ध के मैदान में गया ही नहीं, आराम से राजमहल में ही रहा, और सैनिक तो पूर्णतः युद्ध में ही रचे पचे हैं, तब भी युद्ध करने वाले के रूप में सैनिकों का नाम भी ना लेना और यह कहना कि राजा ने युद्ध किया, ऐसी बात हुई। जिस प्रकार यह कहना कथन मात्र है उसी प्रकार जो कायमान बैगना कर्म रूप पर्ण में धुई है उसका तो नाम भी ना लेना, और जो आत्मा कर्म के पर्णमन में निमित्त भी नहीं है उसको कर्मों का कहता भी कहना भी मात कथन मात्र ही है। देखो आचार्य कितने 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 देखो अब जैसे कर्ता कर्म अधिकार शुरू हुआ तो एक ही रट लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, बोलिए क्यों इतनी मेहनत वो आपके साथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जगत में एक कर्तृत्व के अज्ञान ने इतनी गहरी जड़ें जमा रखी हैं कि निरंतर के अभ्यास करने वाले के भी वो जड़ मूल से मान्यता में उखड़ता नहीं है। कदाचित भाषा में आ जाता है परीक्षा पास करने के लिए, ये बताने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन वो अंदर से नहीं उखड़ता। और अपन कहते हैं क्या क्यों नहीं उखड़ता, तो मैं सीधी बात ये कहता हूं कि किसी आदमी ने एक गलत शब्द रट लिया है तो जैसे वो गलत शब्द जितना रटा है, जितनी मेहनत वो गलत शब्द रटने में की है, अब उसको सही रटने में भी तो उतनी ही रटन होना चाहिए ना, तभी तो काम बनेगा ना। तो अब बोलो कि ये विकल्प तो हम वो 24 घंटा चलते हैं परगे करने के, तो उनका तो रिवीजन हो रहा है, पाठ हो रहा है रोजीना। पाठ क्यों किया जाता जानते आप? आमनाय नाम का स्वाध्याय है कि हमने जो निर्णय कर लिया, समझ लिया है, पढ़ लिया है, वो भूल न जाए। तो वो कर्तृत्व का पाठ 24 घंटा चल रहा है और अकर्तृत्व की बात कदाचित थोड़ी बहुत यहां सुनी है, तो इतने दिन से सुनते आ रहे आप, इसलिए कदाचित सुनने में कोई विरोध भाव खड़ा नहीं होता है, लेकिन जो पहली दफे सुनता है उसको तो अंदर में बहुत तीव्र विरोध भाव खड़ा होता है। कैसे कहेंगे तो कोई काम ही नहीं करेगा, फिर काम ही नहीं करेगा तो देश का काम कैसे होगा, फिर आलस का पोषण करेंगे, भाई करते ही नहीं है, जैसे ही नहीं किया, और जिसने जो किया है उसको तो स्वीकार करना चाहिए, ये कृतज्ञ लोग हैं क्या ये तो कृतज्ञ लोग हैं, ये ऐसा मानते ही नहीं है, ख्याल में आए ना उसको, ऐसा ऐसा भाव आए। वो आचार्य कह रहे भैया जी हमारा पक्ष थोड़ी है, तो वस्तु स्वरूप का पक्ष है, हम तो सिर्फ इतना ये कह रहे हैं कि अग्नि का स्वभाव जलाना है, जरा दूर रहना। अब तुम कहते अग्नि को बदनाम करते हो, अग्नि नहीं होगी तो रोटी कैसे सकेगी, अग्नि होगी तो चाय कैसे बनेगी, अब तुम अग्नि के गीत गाने लगते हो, रोटी भी अग्नि ने बनाई है, चाय भी अग्नि ने बनाई है, कितने कितने काम अग्नि किए हैं, पता तो कुछ है नहीं है, बस ठोक दिया है, कुछ नहीं होगी उसने क्या अग्नि अग्नि जलाती है, अग्नि जलाती है तो रेलवे के इंजन में कितना कोयला डालते हैं और आग लगा देते हैं तो इंजन जल जाए, उसी डब्बे में एक बीड़ी सिगरेट पी के फेंक देते हैं और डब्बा जल जाता है। यदि अग्नि के जलाने से कोई जलता होता तो इंजन जल जाना चाहिए था और डब्बा नहीं जलना चाहिए था, क्यों? लेकिन जिसमें जलने का स्वभाव है वो जलता है, अग्नि तो निमित्त मात्र है, ख्याल में नहीं ना, और जिसमें नहीं जलने का स्वभाव है वो नहीं जलता है। यदि अग्नि सभी पदार्थों को जलाने की सामर्थ्य रखती होती तो रेल का इंजन बन नहीं सकता था, क्यों? कि जब भी उसमें अग्नि डाल के तपाते वो पिघल के अलग हो जाता। यानी कुछ पदार्थ जगत में ऐसे हैं, क्यों? कि जो अग्नि से नहीं जलते हैं, इसे अभ्रक बोलते हैं, होडल अभ्रक क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं जो भी समझ लो आप वो। अब देखिए आपने अभ्रक को छोड़ दो, आपने कोई और पदार्थ देखा है ऐसा कि जो अग्नि के जलाने पर जलता नहीं है? जरा दो मिनट सोचो, अभी तो अभ्रक के अलावा तो हमारी समझ में कोई दूसरा आया नहीं, वैज्ञानिकों से पूछना पड़ेगा। अब मैं बोलता हूं कि ऐसा कौन पदार्थ है कि जिसमें ऐसे परमाणु नहीं है जो नहीं जलते हैं? इस किताब को आप जलाओ तो जल करके जो राख बची रहेगी وہ کیوں نہیں جل گئی؟ یعنی اس میں بھی وہ نہیں جلنے والے پرمانو ہیں شانتی لال جی، سمجھ آئے کہ نہیں؟ کپڑے میں بھی ہیں، اب دماغ دوڑاؤ، یہ تمہاری برنچ ہے اسے بھی جلاؤ گے تو کچھ راکھ بچے گی کہ نہیں؟ اور اپنے پرانے زمانے میں راکھ کو، آگ کو سرکشت رکھتے تھے، کیونکہ ماچس کی بھی اتنی بڑی سویدھا ویوستھا نہیں تھی، تو آگ کو رکھنے کے لیے اس کنڈے میں کو لگا دیتے تھے آگ میں، اور اوپر سے راکھ سے دب کے رکھ دیتے تھے. کیوں راکھ سے کیوں دبا؟ کپڑوں سے دب دو نا. راکھ وہ نہیں جلنے والے پرمانوؤں کا نام راکھ ہے. اب آپ کے گھروں میں وہ راکھ موجود ہے، آپ نہیں جانتے کہ ہمارے گھروں میں بھی نہیں اگنی سے نہیں جلنے والے پرمانو موجود ہیں. اب تو تمہیں سب جگہ دکھائی دینے لگیں گے تمہیں. کیوں؟ جو چیزیں جلی ہیں وہاں جو بنا جلا رہ گیا بچا ہے بعد میں، وہ پرمانو اس میں سے ہی تھے نا، اب وہ نہیں جلتے. تو جگت میں نہیں جلنے والے پدارتھ بھی ہیں اور جلنے والے پدارتھ بھی ہیں. تو جن میں جلنے کا سواب ہے اگنی ان کو جلانے میں نمت ہے، اور جو جن میں جلنے کا سواب نہیں ہے نمت کیا کرنا، کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے. انبر اپادان میں ایسے جلنے کی یوگتا ہو تو وہ جل جاتا ہے. اب دیکھو اسی سمندر میں وہ پیٹرول ہے جو کتنے جلدی آگ پکڑتا ہے، اور وہی سمندر اس پانی سے بھرا ہے کہ جس پانی میں آگ بجھانے کے کام آتا ہے، آگ کبھی لگتی نہیں. اب وہ ایک ہی جگہ ہے زمین میں نیچے دوارکا ہے نا، اپنی گجرات کے پاس، وہ دوارکا کے نیچے بہت تیل نکل رہا ہے. جب اپن کہتے ہیں نا کہ جب وہ دوارکا جلی تھی تو اس پہ پانی ڈالا بجھانے کے لیے تو وہ گھی جیسا جلنے لگا. اب میری ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نیمی ناتھ نے کہا ہے، ابھی مان لو مان لو، نیمی ناتھ نے کہا ہے، کون سے شاستر نے لکھا ہے، نکالو نکالو. اب بھیا وہی وہ تیل نکل رہا ہے، ان نے کوئی دو لوٹا پانی اٹھا کے تو ڈالا نہیں ہوگا اتنی بڑی آگ میں، ان کے پاس بھی مشینیں ہوں گی تو انہوں نے وہ لگا کے سمندر میں اور ڈالا ہوگا تیزی سے، تو وہ جو نیچے مشین لگائی وہاں تیل کا کنواں ہوگا، اندر تلی گئی ہوگی، جانا گہرائی ہے، ارے وہاں تیل کے کنویں میں وہ لگ گئی، اور تم نے زور سے مشینوں سے ساری دوارکا میں چھڑک دیا. مطلب کس نے چلائی دوارکا؟ ارے نمت ہیں تو وہ جو وہ ہیں جن میں وہ بجھانے کی کوشش کری، جن میں وہ بجھانے کی کوشش کری وہ پیٹرول وہی ہے نا. آپ جانتے ہیں وہ دوارکا پہ پانی میں ڈوب گئی، اور آج 500 میٹر نیچے، آدھا کلو میٹر ایک کلو میٹر نیچے دوارکا نگری پوری سمندر میں ہے. راج محل تک دکھتے ہیں کہتے ہیں وہاں، مانے وہ دریا میں اتنا پانی بڑھ گیا کہ 500 میٹر پانی بڑھ گیا، تو وہ کنارے سے دور دور دوارکا تھی نا اندر کو، وہ باہر نکل آئی اور سب تلی کی ختم ہو گئی. اب دوارا بستی بسی، تو ہمارے یہاں تھا دوارکا تھی، ہمارے اس میں مہاراج تھے، کرشن تھے، نیمی ناتھ ہوئے تھے، تو ہم نے اس سمندر کے کنارے ایک دوسری دوارکا بنا لی. ادھر کوئی تھی نا، ہے تو وہ اندر میں 4-5-10 کلو میٹر بھیتر اور 500 میٹر نیچے، سمجھئے نا، تو ہم نے ادھر بنا لی، تو اس کو دوارکا سمجھنے لگے. ایسے مہاراج چھوٹا ہو گیا، اتنا بڑا 500 آدمی 500 دھنس کا ہوتا تھا، کہاں رہتا ہوگا، زمین میں ہو گیا نا چاروں طرف. ایسا خدا نہ خواستے ایسا ہو جائے کہ پوری بمبئی پانی میں ڈوب جائے اور 1 کلو میٹر اونچے تک پانی آ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ سب مہینے اندر میں کھڑے بنے رہیں گے، اور پھر کیا کریں گے؟ بمبئی ادھر کو تھی پشچم کی طرف، تو جو وہ کنارہ آئے گا نا، اس کنارے پہ ہم نیو بامبے بسا لیں گے. ابھی بسا لیں نیو بامبے، اور نیو کی نیو بامبے ہو جائے گی، بمبئی نام سے ہی بسا لیں گے. کیا نہیں کہ نہیں ہے، ایسا ایسا چلتا رہتا، دنیا کا سوروپ ایسا ہے. یہ تو اس میں کیا فرق ہے، یہی جلنے والے پرمانو ہیں، نہیں جلنے والے پرمانو ہیں، یہیں بننے والے پرمانو ہیں، نہیں بننے والے پرمانو ہیں. آتما اس میں کیا کرے، آتما ان کا کرتا رہتا نہیں ہے.